हरे कृष्णा, साम्यवता और सारे दामोदर देश के भक्तों को हरे कृष्णा। हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में बोलिए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। ये जो हर मंगलवार को हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रील प्रभुपाद के प्राण श्रील प्रभुपाद गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इसी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्रीमद् भागवत को विश्वव्यापक रूप में एक श्रील प्रभुपाद ने इसी अपने भागवत के जो भूमिका में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यह भागवत मानव समाज के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का शास्त्र है। सब मानवता एक ही केंद्र के ऊपर कैसे अपने आप को जोड़कर और सुखी रह सकते हैं इस विश्व के अंदर। तो आप सबको हमारी प्रार्थना है कि श्री प्रभुपाद जी का जो इसको आमुख कहते हैं प्रीफेस, रात हमने रास्ते में आते हुए फ्लाइट में मैं पढ़ रहा था और फिर इंट्रोडक्शन में श्री प्रभुपाद ने मुख्य रूप से कहा है भागवतम श्रीमद् भागवत को ऐसे समझना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में भक्त के रूप में, श्री कृष्ण भगवान भी है भागवत भक्त भी है, और उन्होंने जैसे भागवत को समझा श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। हाँ, ये अमल पुराण है, वैष्णव का प्राण है। तो इस भागवत को उस इंट्रोडक्शन को पढ़ने में हो सकता है एक दो दिन लग जाए, लेकिन एक बार चेतना महाप्रभु की कृपा से ही भागवत के रहस्यों को समझ सकते हैं। नहीं तो चेतना महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत है कृष्णेर अंग प्रति श्लोक प्रति अक्षर गोपी कृष्ण नाना रंग। इसका मतलब एक एक शब्द में और एक एक पृष्ठ के ऊपर गोपी और भगवान श्री कृष्ण का, इसका मतलब भगवान के प्रेमी भक्तों का और भगवान का नाना प्रकार के भांति भांति के जो 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 रसमय संबंध है उनका वर्णन है। तो इसको ऐसे समझने के लिए, ऐसे इसको हृदय में उतारने के लिए चेतन महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता है। तो हमने लास्ट जो 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 गत मंगलवार को पहला श्लोक जिसके लिए कहा था, पहले तीन श्लोकों को श्रीमद् भागवत का व्यासदेव का मंगलाचरण है, और जो श्लोक हम रोज पढ़ते हैं भागवत से पहले नारायणम नमस्कृत्य, ये रोमहर्षण का मंगलाचरण है पुराणों को। तो वो भी मंगलाचरण का श्लोक है और ये भी मंगलाचरण का श्लोक है। और भागवत के महात्म का मंगलाचरण जो स्कंद पुराण पद्म पुराण में किया हुआ है, स्कंद पुराण में बहुत सुंदर है लेकिन जो पद्म पुराण में किया है वो है सच्चिदानंद रूपाय श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे ताप त्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। तो वहां तो सीधा कृष्ण को नमस्कार किया है पद्म पुराण के। कैसे है कृष्ण जिनका रूप सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद रूपाय, जिनका रूप नित्य है आनंदमय है और ज्ञान का भंडार है। तो उनके ज्ञान के भंडार की का परिचय श्रीमद् भगवद गीता के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ। उसके आनंद का अभिव्यक्ति भगवान की रास लीला में दर्शन होता है उसका, कि भगवान रसमय है, सबके साथ रस आनंद के रस का व्यवहार करते हैं। और सत का मतलब भगवान जब जगत नहीं था तब ही थे, वो आदि सत है, अनादिर आदिर गोविंदा, वो सत है। अब हमारे नाम तो संसार में जब रखे जाते हैं उसके बाद हमारी पहचान के लिए व्यवहार के लिए वो नाम होते हैं, लेकिन भगवान के आने से पहले उनका नाम था और जब आए तो उसका नाम कुछ था और कुछ उसके उसके गुणों के अनुसार नाम शास्त्रों में आए हैं, लेकिन भगवान का नाम पहले से था। हमारे जन्म से पहले हमारा कोई नाम नहीं था। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं बलराम जी के जन्म से पहले कृष्ण ने बलराम जी का नामकरण देवी को कहा कि क्योंकि आप उसको यहां से खींच कर ले जाएंगी रोहिणी के उदर में तो उनका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि वो बहुत बलशाली होगा इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे और सबको आनंद देगा इसलिए उसको राम कहेंगे। तो ये भगवान के नाम भगवान से के प्रकट होने से अवतार काल से पहले की भगवान के नाम थे, इसलिए कहते आदिर अनादिर आदिर गोविंदा। ऐसे नहीं भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तभी उनका नाम कृष्ण था, पहले कृष्ण नाम नहीं था। ये नाम शाश्वत है। हमारे नाम जो है ये तो काल के काल में चले जाते हैं। हमारे नाम तो सिर्फ पहचान के लिए होते हैं, इस किसी चीज का नाम इस संसार में व्यवहार में पहचान पहचान के लिए होता है, लेकिन भगवान का नाम व्यवहार में पहचान के लिए नहीं है। जैसे जब अजामिल ने नारायण का नाम उच्चारण किया तो अपने बेटे के व्याज से किया था, लेकिन विष्णु दूत कहते हैं इसके बेटे का नाम नारायण तो जन्म के बाद लिखा गया, लेकिन हमारे वैकुंठ नाथ का नाम नारायण तो अनादि काल से है, वो तो कोई डिक्शनरी का नाम तो नारायण नहीं है, वो तो नित्य शाश्वत भगवान का नाम है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, ये जन्मादिस्य जो इस श्लोक में है उसको वहां लिखा है विश्व उत्पत्ति हेतवे। तो विश्व की उत्पत्ति करना पालन करना संहार करना और तापत्रय उन्मूलाय, ये हमारे इसके दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में है तापत्रय विनाशाय। और फिर कहते हैं प्रणाम में यहां सत्यम परम धीमहि है, वहां कहते हैं श्री कृष्ण वयम नमो, हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सर लव जिहाद के क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। सो आप पहले श्लोक को एक बार पाठ कर लेते हैं, कि आपके पास पुस्तक है तो पढ़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र, इसका ऋषि लास्ट टाइम बोला था, नारद ऋषि है ये। नारद ऋषि के हृदय के ऊपर तपस्या से और प्रेम से प्रकट हुआ मंत्र, उसका ऋषि वो है। और भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए, उनको नमस्कार करते हैं। जन्मादि अस्य का अर्थ ये वेदांत सूत्र यहाँ पहले श्लोक में दिया गया है कि भगवान सृष्टि के पहले तो सृष्टि करना, ये भगवान की सृष्टि लीला कहलाती है, ये भगवान की ऐश्वर्य की लीला है और भगवान की माधुर्य की लीला को कहते हैं रास लीला। तो सृष्टि लीला और रास लीला, एक ऐश्वर्य की लीला है और करुणा की लीला है और दूसरी माधुर्य की, ये दोनों लीलाएं हमारे आचार्यों ने कहा है हमारे भक्तों के लिए बड़ी रसमयी हैं और दोनों का आनंद लेना चाहिए। तो जन्मादि अस्य का अर्थ यह हो गया, भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। हमारे आचार्यों ने तो इनका बहुत सुंदर कृष्ण भावना भावित अर्थ भी दिया है कि राधा कृष्ण का यहाँ जो है वर्णन है और बहुत से आचार्यों ने तो सौ सौ इसके अर्थ किए हैं। और इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बड़े गौरव से कहते थे, हमारे गुरुदेव मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद ने ढाका में एक महीने तक से अधिक इस श्लोक के ऊपर व्याख्या की थी। तो अपने को तो सरलता से अभी इतना देखना है कि भगवान स्वतंत्र है, सबका आधार वो है, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र है और उनको जाना जा सकता है, वो सब कुछ जानते अभिज्ञ है। और ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने आदि कवि के हृदय में सारा वेदों का ज्ञान, विशेष रूप से चतुर्श्लोकी भागवत तो साक्षात हाथ मिला के दी। ये वर्णन हमारे को दूसरे स्कंद में मिलता है श्रीमद् भागवत में, कर स्पर्शा हाथ हाथ मिलाकर चतुर्श्लोकी भागवत दी और वेदों को ज्ञान दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के चार मुख है, चार वेद हैं और ब्रह्मा जी वेदों के आचार्य माने जाते हैं। मनु जी मनुस्मृति के स्मृति के आचार्य हैं और ब्रह्मा जी वेद के आचार्य हैं। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यद सूर्य, क्यों देने की जरूरत है? हम रात को सो जाते हैं, सिवा हमारे को सब चीजें याद होती है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सृष्टि के काल में ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है, इसको देने वाला सिर्फ भगवान है। तो जब वो एक बार ब्रह्मा सो जाते हैं तो सृष्टि करने का सारा कर्म भूल जाते हैं। ओ क्यों मुह्यन्ति यत सूर्य, देवता भी उसमें मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान सृष्टि करने के लिए पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या के उपरांत उसको सृष्टि करने का, जो पूर्ववत सृष्टि जैसे पहले थी ऐसे करने का ज्ञान उनके हृदय में देते हैं। और तेजोवारी मृदाम यथा विनमयो अत्र त्रिसगो अमृषा, कि जैसे जल में अग्नि दिखाई दे दे अथवा सूखी धरती के ऊपर पानी दिखाई दे दे, ऐसे ही तीनों गुणों के कारण इस संसार के अंदर जो कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है सत्य है, लेकिन असल में सत्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान से निकलता है इसलिए सत्य है, और सत्य क्यों नहीं है इसके लिए एक उदाहरण जैसे देते हैं, नदी के किनारे पेड़ के अंदर लगे हुए फल को कोई नदी के अंदर खाने का प्रयास करे और नदी में बार बार छलांग मारे कि नदी के अंदर फल का प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करे तो फल नहीं मिलेगा और गोते खाएगा। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहे कि अरे भाई फल तो नदी के अंदर नहीं है, फल पेड़ के ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नदी में पड़ रहा है। ऐसे ये सारा संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है और यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो सब असली आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन यहाँ वो फैक्चुअल नहीं है। प्रभुपाद शब्द लिखा है फैक्चुअल नहीं है कि वो कैसा है, जैसे मृग तृष्णा, जैसे लास्ट टाइम इसके ऊपर चर्चा हुई थी, जैसे गर्मी में रेत के ऊपर पानी का आभास हो जाए कि सामने पानी है और पानी है नहीं, ऐसे इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो परिवर्तित रूप है असली आध्यात्मिक जगत का, वो उसका प्रतिबिंब है। और फिर कहते हैं ये तो हुआ जगत के विषय में, लेकिन भगवान के विषय में क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो अपने धाम में भगवान नित्य इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे, उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि। अगर आपको याद होगा तो हमने चेतना चरितमृत से कृष्णदास कविदास गोस्वामी के शब्दों में ये वर्णन किया था कि मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, एक विषय वस्तु का निर्देश होता है, एक नमस्कार होता है, एक आशीर्वाद होता है। तो इस श्लोक में विषय वस्तु है सत्यम परम, और धीमहि का मतलब हमारी बुद्धि लगे, जो गायत्री का सूचक है। तो इसलिए कहते हैं इस एक श्लोक में ब्रह्म सूत्र भी है, गायत्री भी है, सृष्टि भी है। तो ये व्यासदेव की परिपक्व में प्रकट भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में वेदांत सूत्र के ऊपर उसी व्यासदेव की अपनी ही टीका है। इसलिए अब परम सत्य क्या है इसमें प्रभुपाद जी प्राय कहते हैं भगवान, तो कहते हैं कंट्रोलर को जो कंट्रोल करे। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रोलर है जो नेम में रखते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कंट्रोलर नहीं है, वो सारे कंट्रोलरों का आदि कंट्रोलर है। इसलिए इस पूरे परपट में, बहुत लंबा परपट, 12-13 पेज का परपट है शायद, इसमें कहीं भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण को गार्ड नहीं कहा है, उसमें परम सत्य कहा है। भागवत सीधा परम सत्य की बात कही है। अगर परम सत्य को ठीक तरह से आपको देखना है तो पहले स्कंद के 7वें अध्याय में जाके एक बार व्यास देव के हृदय में ये परम सत्य जैसे प्रकाशित हुआ है, जब वो सरस्वती के तट पे ध्यान में बैठे हैं भक्ति योग से मन को एकाग्र करके, तो उस वक्त उनके हृदय में परम पुरुष भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट हुए हैं। उनके पीछे माया शक्ति, उनके पीछे जीव शक्ति, और जीव शक्ति माया से मोहित, और माया भगवान से लज्जित, और भगवान के पूर्ण वश में, भगवान के सामने कभी आती नहीं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि संसार में सब लोग दुख क्यों भोग रहे हैं, तो महाप्रभु ने सिर्फ एक सरल उत्तर दिया था, कृष्ण बाहर मुख जीव, भगवान को मुख, भगवान के सामने सन्मुख न बैठ कर पीठ देख के बैठा हुआ जीव संसार के अंदर दुख भोग रहा है। इसका मतलब भगवान के सन्मुख हो जाए तो दुख समाप्त हो जाएंगे। वो हिंदी में जैसे लिखे 36 के आंकड़ा इस वक्त है, हाँ, तो 6 की टांगे एक तरफ और 3 की टांगे दूसरी तरफ, और जब भगवान की कृपा से किसी सत्पुरुष का संग कर लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे को घुमा के भगवान की ओर कर देता है, तो 63 का आंकड़ा हो जाता है, दोनों का एक दूसरे के साथ सन्मुख हो जाते हैं, तो वो जैसे हो जाते हैं, तो फिर इंग्लिश क्लास जब होगी तब बताएंगे आपको जीवन प्राण जीवन जी। अब कोई पूछ रहा है कि इंग्लिश क्लास कब होगी, अब इंग्लिश भी शुरू करेंगे भगवान कृष्ण की कृपा होगी तो यहां तो वहां ये सारी शक्तियां भगवान की, भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ परिपूर्ण रूप से परम सत्य कहलाते हैं। तो आज हम दूसरे श्लोक को भी दर्शन करते हैं, आइए दूसरे श्लोक का दर्शन करते हैं। आप खोलिए पुस्तक पढ़िए, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयौन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वर सदयो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा। भगवत गीता तो आप सबने बार बार पाठ करते हैं पढ़ते हैं, भगवत गीता पूर्ण आहुति होती है सर्वधर्मान परित्यज्य, और श्रीमद् भागवत इस श्लोक में वहां से आरंभ होती है जहां भगवत गीता समाप्त होती है। यहां लिखा है धर्म प्रोजित, सारे धर्मों को छोड़ दिया, कौन से, सर्वधर्मान परित्यज्य, जहां सर्वधर्मान परित्यज्य गीता में जहां सर्वधर्म परित्यज्य परिकाष्ठा पे समाप्ति पे आया, वो भागवत के आरंभ में धर्म प्रोजित और धर्मों को, कौन से धर्मों को, कैतव धर्मों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहते हैं। एक होता है धर्म स्वर्ग प्राप्त कराने वाला धर्म, एक होता है उससे आगे का मुक्ति का धर्म, एक होता है वैकुंठ तक प्राप्ति का धर्म, लेकिन यहां परमो धर्म, परम धर्म क्या है, तब नारद जी लिखते हैं प्रेम रूपा, प्रेम रूपा धर्म, बोला कैसे, उदाहरण जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, और भगवान के भक्त कपिल देव के तीसरे स्कंद की शिक्षा के अनुसार सारी मुक्तियों को भी कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुक्ति, सायुज्य तो चाहिए किसी को भी नहीं, लेकिन सारूप्य सारिष्टि सामीप्य ये मुक्तियां भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवत सीधा पंचम पुरुषार्थ प्रेम, इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया पाश्चात्य देशों में तो ये नहीं कहा कि मैं किसी धर्म का प्रचार मजहब का प्रचार करने आया हूं। श्री प्रभुपाद ने कहा अगर मैंने कहा होता कि आपके मजहब से मेरा मजहब अच्छा है, आपके रिलीजन से मेरा रिलीजन सुपीरियर, तो ये लोग तो मुझे कब का जो देव अंग्रेजी में कहा, ये तो मेरे को लात मार दी होती, लेकिन मैंने कभी कंपेरिजन नहीं की। मैंने कहा मैं आपको साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। तो ये भागवत भगवत प्रेम का विज्ञान है, ये किसी विशेष जाति का, ये किसी विशेष काल के लिए नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी विशेष स्थान के लिए नहीं है, ये सर्वजनिक है, ये सार्वभौमिक है, और ये सर्वकालीन है। तो सार्वभौमिक मतलब पूरे भूमंडल के लिए है, सब 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 प्लानेटरी सिस्टम सब लोगों के लिए है, सर्वजानिक है, ये सबके लिए। एक प्रभुपाद जी का इंटरव्यू कल मैं पढ़ रहा था, कोई इंटरव्यूअर को प्रभुपाद जी कहते हैं आप बताइए अगर भगवान को जानते हैं तो उसकी एड्रेस बताइए, कहाँ रहता है, उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, तो आप मेरी बात को सुन लीजिए और मान लीजिए, क्योंकि आपके पास नहीं है और मेरे पास है, मैं तो बताता हूँ उनका नाम कृष्ण है, उनकी माता का नाम यशोदा, उनकी माँ उनके पिता का नाम नंद बाबा है, वो कहाँ रहते हैं, वो गोकुल में रहते हैं, मैं वो क्या करते हैं ये भी मैं बताऊं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपके वो नहीं आता है तो आप सीख लो। तो प्रभुपाद जी ने जो विश्व को कहा ये समाचार दिया कि मैं आपको प्रेम, भगवत प्रेम, और जो भी धर्म भागवत प्रेम को जो सबके हृदय में भगवान को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से रख दिया है, जिसको चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध। सिद्ध शब्द अभी तो आजकल प्रेशर कुकर आ गए हैं इसलिए हमको अनुभव नहीं है, पुराने जो चूल्हे के ऊपर चावल पकाते थे ना या दाल, तो एक दाना दाल का चावल का निकाल के ऐसे मसल के देखते थे और अगर अच्छी तरह से पक गया है तो कहते चावल सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया का मतलब तैयार हो गया, अब इसको आराम से आप भोग लगा के प्रसाद पा सकते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान ने अपना प्रेम परिपूर्ण रूप से पका हुआ तैयार सबके हृदय में भर के रखा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं, ऐसे नहीं है कि दान देंगे तो मिल जाएगा, यज्ञ करेंगे तो मिल जाएगा, तप करेंगे तो मिल जाएगा, जप करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, किसी साधन से नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से तैयार पड़ा है। साधन से कोई चीज तब मिले जो पहले हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे पास पड़ा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, शर्मणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, बस हम केवल भगवान की कथा को सुनेंगे। You should follow the one and only one आचार्य गुरुदेव ऑफ इंडिया। हाँ जी, हम श्रील प्रभुपाद एक ही आचार्य है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का। ये माधव कोई पूछ रहा है एक प्रश्न कि आप एक ही आचार्य को, हम एक ही आचार्य को फॉलो करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर आचार्यत्व की स्थापना करते हुए भगवान के स्वरूप वांग्मय स्वरूप भागवतम को स्थापित किया है, आज वो पूरे विश्व की भाषाओं में उपलब्ध है। ये कोई धर्म नहीं है, ये तो सबके लिए धर्म, इसलिए कहे परो धर्मो, धर्म प्रोजित कई तो अत्र परमो, ये अत्र परमो, इसमें परम धर्म की बात है, कैतव धर्म की बात नहीं है। कैतव शब्द का अर्थ है जो हमको धोखे में रखे, किस बात के धोखे में रखे, इस बात के धोखे में रखे कि स्वर्ग में जाएंगे तो सदा के लिए रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे सदा स्वर्ग में सदा के लिए, ये तो भगवत गीता में सीधा लिखा है, तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विचन्ति, ये तो क्षीण पूर्ण मृत्यु लोक में वापस आ जाएगा। और मुक्ति, ब्रह्म लीन वाली मुक्ति में भी भगवान के चरण कमलों का अनादर करने से पतंति अधो, ये भागवत के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक है कि कृष्ण परम पदम, बड़े मेहनत करके पूछ पर के पद को प्राप्त कर लिया, ज्ञान मानी ना, अपने आप को ज्ञान का अभिमानी मानते हैं, नहीं, पतंति अधो यद अंग ही भगवान के चरण कमलों का अनादरात, अनादर करते हैं इसलिए वापस गिर पड़ते हैं। तो स्वर्ग का धर्म भी कई, तो मुक्ति का धर्म भी शाश्वत नहीं, वैकुंठ में भी केवल मुख्य रूप से दास भाव की प्रधानता है और शांत भाव की प्रधानता है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद के वृद्ध भागवत अमृत में जब गोप कुमार वैकुंठ में गया तो भगवान को आलंगन करने की इच्छा कर रहे थे, आलिंगन तो कहीं करने देते, वहां तो दूर रहते हैं सारे। जब भगवान श्री कृष्ण ने, सारे ग्वाल भालू ने जब वरुण लोक से नंद बाबा को कृष्ण त्रयोदशी के दिन वापस लाए, द्वादशी के स्नान करने गए थे सवेल, तो वापस लाए तो बड़े सुंदर कपड़े वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। तो नंद बाबा ने कहा ये हमारे कृष्ण को तो बहुत लोग जानते हैं, इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, देखो वस्त्र आभूषण इनको तो दिया, मैं इनका पिता हूं, मेरे को भी दिया। अरे उस वक्त सबने पकड़ के कृष्ण को कहा कन्हैया क्यों, तुम्हारे पिता ही तुम्हारे पिता है, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, हमारे को क्यों नहीं आप ऐसा दिखाते हो आपका। भगवान ने कहा अच्छा आप सबको देखने की इच्छा है तो फिर आइए मैं आपको वैकुंठ का दर्शन कराता हूं। एक तो किसी कल्प में जहां अक्रूर घाट है वहां ले जाके सबको वैकुंठ का दर्शन कराया, और एक जगह गरुड़ गोविंद का जहां छत्तीसगढ़ के पास मंदिर है वहां गरुड़ को कहा कि इन सबको वैकुंठ का दर्शन करा के आओ। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए भगवान को, ओ नारायण को कृष्ण नारायण के रूप में बैठे हैं, शंकर ब्रह्मा आदि स्तुति कर रहे हैं, नारद खड़े हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं। अरे हमारा कन्हैया इतना बड़ा, ये सब लोग कन्हैया की सेवा करते हैं। तब एक ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया के पास चलो चलते हैं बात करेंगे, तो कहीं नहीं जा सकते हो आगे। तो गैया बोला यहाँ गैया नहीं है, बोला मैया जी शुदा, बोला मैया नहीं है। अब तो सारे ग्वाल बाल कहते कन्हैया कन्हैया ये तेरा वैकुंठ बंद करो, नहीं चाहिए, न मैया है न गैया है न कन्हैया, हमारे को गले मिलता है न बांसुरी है, हमको नहीं चाहिए ये, हमको नहीं चाहिए ये, ये बहुत बड़ी बात है कि वैकुंठ में भी भक्त को सखा भाव का तो है ही नहीं, स्थान नहीं है, वात्सल्य है, कौन भगवान का बाप बन सकता है वैकुंठ में। इसलिए कहते हैं ये तीसरे श्लोक में आवे भूमि इस भर धरती के ऊपर ये रस है, ये भागवत का रस इस धरती के ऊपर है, न सत्य लोक में है न स्वर्ग लोक में न वैकुंठ में, ये यहां कहीं नहीं है, यहां धरती के ऊपर है, इसलिए पियो 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 ये आएगा तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के। तो यहां जो शब्द है चार धर्मों का वर्ण है इस एक श्लोक में, कई तब धर्म के अंदर स्वर्ग का धर्म हो गया, मोक्ष का धर्म हो गया, वैकुंठ आदि तक का भी। ये तो हम दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं कि वैकुंठ चाहिए, बोला वैकुंठ भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, यहां वृंदावन में, यहां वृंदावन में आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। इया दामोदर इया हे दामोदर, यही वृंदावन में क्या करो, प्रेम भक्ति दे दो, बस आपके मुख का दर्शन, आपका दर्शन करो, मुझे सेवा करिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये परम धर्म है, बोला इसको समझ कौन सकते, निर्मत्सराणाम सताम, सताम कहते हैं भक्त को, सत्य तो भगवान है जैसे परम सत्य है, और जो उसके अनुयायी हो उसको सताम कहते हैं, सत्य को जो धारण करने वाले हैं वो सताम है। तो ऐसे भक्त जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जो दूसरे से जलन करे, दूसरे में दोष देखे उसको कहते हैं मत्सर। और यहां श्रीला प्रभुपाद ने निर्मत्सराणाम का अर्थ लिखा है 100% प्योर, इसका मतलब निर्मत्सराणाम, हरे कृष्णा, मंगलाचरण क्या होता है, ये हमारा एक मीनू गुप्ता पूछ रही है। मंगलाचरण किसी कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलमय निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए इष्ट देव को प्रार्थना की जाती है, नमस्कार किया जाता है, और मैं इस कार्य में क्या विषय देने जा रहा हूं संसार को, उस विषय वस्तु का निर्देश होता है, और आशीर्वाद होता है कि जो इसका पाठ करेगा अथवा इसको जो सुनेगा उसको क्या लाभ होता होगा, और अपने आप के ऊपर क्या आशीर्वाद होगी। तो ये तीन चीजें मंगलाचरण में होती है। पहला मंगलाचरण में होता है कि ये निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, कृष्ण वयम नमोहो, कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर विशेष विषय क्या है, भाई मैं क्या लिखने जा रहा हूं आपको, इस शास्त्र में दे रहा हूं, पुस्तक दे रहा हूं, कविता दे रहा हूं, इसमें है क्या, वो तो जो लिखता है उसी को मालूम है कि इसमें सब्जेक्ट में क्या दे रहा हूं, नहीं तो पढ़ने वाले अपना अपना अनुमान निकालते हैं। यही तो प्रभुपाद जी का कहना है कि भगवत गीता में भगवान ने भक्ति दिया और लोगों ने उसके ऊपर टीका करते हुए, कोई कहता है ग्राम ज्ञान दिया है, कोई कहता है कर्म दिया है, कोई कहता है योग दिया है, तो ये हो गई लोगों की टीका, लेकिन कृष्ण की अपनी टीका क्या है, कृष्ण कहते भवमत भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये तो सीधा आदेश है, बाकी तो जो है वो शिक्षाएं हैं, भगवत गीता में भगवान के आदेश एक ही है, शिक्षाएं अनेक है, लेकिन आदेश एक है। कोई और प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त सत्संग का समय है। साधु संत महात्मा या भगवान, या भगवान के प्यारे भक्तों के पास आप प्रेम से जाओ, या आप लालच से जाओ, या आप ईर्ष्या से जाओ, या क्रोध करके जाओ, वो आपका आपका तो भला ही करेंगे, आपका अहित उनसे होगा ही नहीं। संत से किसी का अहित नहीं होता है, और भगवान किसी से अन्याय नहीं करते, वो सबका भला करते। ये तो सातवें स्कंद में है कि कंस ईर्ष्या करता था, हाँ भगवान से शिशुपाल क्रोध करता था, लेकिन उनको भी भगवान ने सदगति दे दी, तो जो प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं उनका क्या कहना। तो ये प्रश्न किसी का था। तो धर्म प्रोजित कई तवो अत्र, तो मंगलाचरण का अर्थ आपको समझ में आ गया देवी। मंगलाचरण किसी काम को शुरू करने से पहले इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस, सही कार्य मंगलमय हो, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो, बाधा नहीं हो, रुकावट नहीं पड़े, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। सो आगे लिखा है निर्मत्सराणाम सताम, जो भागवत का प्रचार करना चाहिए उनका हृदय निर्मत्सर होना चाहिए, उसके हृदय में किसी के अंदर दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उसका उदाहरण है। भागवत का प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क के अंदर हिप्पी उनके पहले ऑडियंस थे, उनके अंदर कितने दोष थे। अगर कोई वृंदावन का तो क्या कोई सामान्य भारतीय शिष्टाचार और आचरण वाला साधु संत उन लोगों के साथ बात भी करना पसंद नहीं करेगा जो दोषों से भरे हुए हैं। हाँ, चार दोष, नशा करना, स्त्री पर पुरुष का विवाह से बाहर संबंध करना, जुआ करना, मांस खाना, ये तो नित्य जिनकी कृत थी उन सब के अंदर दोष को देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण पूतना तो विष लगा के मारने के लिए आई थी ना, लेकिन भगवान ने विष की ऊपर दृष्टि नहीं डाली, दूध पिलाने वाले भाव के ऊपर दृष्टि डाली, दूध पिलाने वाले भाव के ऊपर दृष्टि डाली, उसको धात्री गति दे दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निर्मत्सर। भगवान किसी में दोष दृष्टि नहीं देखते हैं, न भगवान के भक्त दोष दृष्टि देखते हैं। ये प्रभुपाद जी की परम निर्मत्सरानान का ऐसा अद्भुत उदाहरण है, जिन्होंने किसी के अंदर, कई बहुत बड़े पादरियों से मिले, जब सामान्य लोग नहीं मिलते हैं, सभी धर्म के आचार्यों से मिले, गुरुजनों से मिले, लेकिन सबके प्रति सद्भावना अपने स्थान के ऊपर, किसी में दोष दृष्टि नहीं। सिद्धांत की बात और है, व्यक्तिगत किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं, और इतने निम्रता वाला स्वभाव है। और हमको भी अगर प्रचार करना है और दूसरों के हृदय में परिवर्तन लाना है तो दोष दृष्टि से रहत निर्मत्सर होना चाहिए। दूसरा शब्द निर्मत्सर के लिए भगवत गीता में आया अनुसूय वे, वो नवे अध्याय में है कि मेरे इस दिव्य गुह्यतम ज्ञान को जो अनुसूय है, मतलब जो निर्मत्सर है, अनुसूय और निर्मत्सर की एक ही माना है। अनुसूय मतलब किसी में दोष नहीं देखी, और निर्मत्सर का मतलब जिसके अंदर, मत्सर का मतलब ईर्ष्या नहीं। तो वहां भी जो गुह्यतम ज्ञान है, कौन सा गुह्यतम ज्ञान है? मन मनाभाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये गुह्यतम ज्ञान है। मद भक्तो, भक्त का मतलब होता है प्रेम करने वाला, भक्त की परिभाषा यह हृदय से प्रेम करे, तो प्रेम करने वाला निर्मत्सर होना चाहिए। तो प्रचार अगर करना है, दूसरों को सुख देना है, दूसरों को के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको जगाना है, तो फिर सुनाना है, क्योंकि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते जब सुनेंगे तब उनके हृदय में प्रेम प्रकट होकर बाहर आ जाएगा। हमारे दीन बंधु जी ने, और कई बार हमने आपके वहां ये उदाहरण दिया होगा कि भारत में जो नलकूप होते हैं, हैंड पंप होते हैं ना, तो मई जून में उसमें गर्मी के कारण अंदर वैक्यूम हो जाता है, पानी नहीं आता है, जब चलाते हैं तो हवा आती है। तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं, हवा तो नहीं, अंदर पानी तो नीचे है, ऊपर आ क्यों नहीं रहा है। तो बुद्धिमान लोग जो भारतीय संस्कृति में इस नलकूप के विज्ञान को जानते हैं, वो कहते हैं एक बाल्टी पानी के लाओ, दो चार जग ऊपर से डालेंगे और फिर नल का चलाओ तो पानी आ जाएगा। तो जैसे ऊपर से पानी डालते हैं वैक्यूम वाली हवा निकल जाती है, फिर पानी किस तरह पानी पानी तो चलाने से आ जाता है। ऐसे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम तो पहले से लबालब भरा पड़ा है, लेकिन बीच में माया ने थोड़ा सा वैक्यूम बना दिया है। और ये भगवत कथा की दो चार पांच जग पांच बाल्टियां अंदर जाएंगी और भगवान का कीर्तन होगा तो ये बीच में से माया हट जाएगी। चेतो दर्पण मार्जन, चेतो दर्पण मार्जन चित्र रूपी आईने के ऊपर से लगी हुई मिट्टी खत्म हो जाएगी और हृदय जैसे साफ हो गया, कृष्ण प्रेम तो पहले से अंदर पड़ा है, वो उदय का मतलब उग जाएगा। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसा नहीं है कहीं से कोई सूर्य लाता है, बस अंधकार गया सूर्य अपने आप उग जाएगा, और सूर्य उगते ही अंधकार चला जाएगा। ऐसे ये हमारी अज्ञानता अविद्या जो सारे पापों का जड़ है और सारे दुखों का जो सारे दुखों का जो मूल है वो अविद्या है, और ये अविद्या इसको अज्ञान कहते हैं, इसको अंधकार कहते हैं। वो कृष्ण सूर्य समान है, उसके उगते ही अंधकार चला जाएगा। तो ये प्रेम को प्रकट करने के लिए अगर दूसरों को भागवत की शिक्षा देनी है तो हृदय में से ये ईर्ष्या और जलन को निकाल दीजिए। संसार में ईर्ष्या और जलन इतनी है कि अपने सगे संबंधियों से भी बहुत बड़ी ईर्ष्या जलन होती है कि उसकी गाड़ी बड़ी क्यों, उसका घर बड़ा क्यों, उसकी घड़ी बड़ी क्यों, और ये तो जलन तो भरी पड़ी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये जलन नहीं है ऐसी, वहां सब कहते हैं हम कृष्ण के पास सबको कैसे भेजे। जो कृष्ण के पास दूसरे को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है वहां कोऑपरेशन है, यहाँ कॉम्पिटिशन है। जहां कॉम्पिटिशन होती है, कॉम्पिटिशन का मतलब स्पर्धा, और कोऑपरेशन का मतलब एक दूसरे से सहयोग, तो वहां सहयोग का वातावरण है। संसार में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन स्पर्धा है, द्वंद है, लेकिन वहां सबका प्रेम का वातावरण है। तो परमो निर्मत्साणाम सतम वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। वेदों में जो वास्तव वस्तु है, क्या है, भागवत में वास्तव वस्तु है कैसी है, शिवदम कल्याणकारी है, ये सबका निरंतर कल्याण करने वाली है। बोला कल्याण किसी का कब बोला, बोला जब ताप त्रय उन्मूलनम, जो तीन प्रकार का कष्ट सबको भोगना पड़ रहा है संसार में, आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इनको जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंक देती। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके पाठ तो दूर की बात है, केवल श्रवण करने मात्र से ताप त्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये श्रीमद् भागवत महामुनि व्यास देव की कृति है, इसका मतलब उसके पवित्र हृदय पे ये प्रकट हुआ है। यहां एक बात बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यास देव ने भागवत को प्रकट किया, उससे पहले भागवत नहीं था, नहीं, भागवत भगवान श्री कृष्ण के समान है। भगवान श्री कृष्ण नित्य है तो भागवत नित्य है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य को देव को दिया, फिर भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया, अब फिर पुनः मैं आपको अर्जुन दे रहा हूं, इसका मतलब भगवत गीता का ज्ञान तो पहले ही था, लेकिन फिर वो काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से नष्ट हो गया, और नष्ट होने का मतलब उसको जानने के योग्य पुरुष रहे नहीं, अथवा लोगों ने अपने उसके ऊपर टीकाएं करके और उसका जो अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे ही भागवत नित्य है, शाश्वत है, धारावाहिक है, लेकिन किसी समय अप्रकट होता है, किसी समय प्रकट होता है। जैसे भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। तो इस बार भागवत कृष्ण द्वापायन व्यास सत्यवती और पराशर के पुत्र के हृदय के ऊपर नारद की प्रेरणा से प्रकट हुआ। ये पहले भी अप्रकट रूप में भागवत नित्य शाश्वत है, तो अब इस बार महामुनि के हृदय में प्रकट हुआ। किम वा परेश्वर ही, किम वा परई, तो फिर और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या रह गई। जब उसी व्यास देव ने वेद को विभाजित करके चार किया, उपनिषद पुराण दिए, वेदांत सूत्र महाभारत दिए, उन्होंने परिपक्व अवस्था में जब इस भागवत को प्रकट किया तो फिर दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, जो कुछ भी जहां भी दुनिया के किसी शास्त्र में है वो तो इसमें मिलेगा, और जो जहां कहीं भी नहीं है, जैसे भगवत प्रेम का परम परम काष्ठा, जो जो अल्टीमेट क्लाइमेक्स जो कहीं नहीं मिलती है, वो इस भागवत में दसम स्कंद में बहुत सुंदर पांच रसो अध्याय में जो इस भागवत का हृदय है। लेकिन उस हृदय तक पहुंचने के लिए नौ स्कंद अच्छी तरह से समझेंगे तब भगवान क्या है उसका अनुभव होगा, तभी आगे उसमें प्रवेश कर सकते हैं। सो अब आगे कहते ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी ही। जैसे कोई भागवत सुनने की केवल इच्छा करे, अपने घर से सुनने के लिए कहे कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, केवल इच्छा मात्र सुष्म इच्छा मात्र से सुश्रु भी सुनने की इच्छा मात्र से ईश्वर हृदय में सद्य एकदम भगवान हृदय में अवरुद्ध होके मतलब बैठ जाते हैं चकुन चौकने होके, अरे मेरी कथा सुनने जा रहा है। हाँ, जैसे हमको हमारे नाम से कोई काम अच्छी बात कहे तो हमको अच्छा लगता है, तो भगवान भी भगवान अपनी महिमा सुनने जाने वाले के प्रति आकर्षित होके उसके हृदय में चौकने होके बैठ जाते हैं, अरे अरे क्या कहे मेरी सुनने मेरी कथा सुनने जा रहा है। अरे हमारे अंदर भी अपने अपने गुण सुनने की अपनी महिमा सुनने की जो इच्छा है ये कहाँ से आई, भगवान भगवान में नहीं होती, जो हमारा सोर्स है उद्गम स्थान है तो हम में कहाँ से आती। लेकिन कहते ऐसा कौन है जो सुनने जाएगा, उसका लक्षण कृति भी। कृति भी का मतलब सुकृति भी ही। ये भागवत सुनने वाले कौन है, बोलो जिनके हृदय में कई जन्मों से कुछ अज्ञात सुकृति हो गई है। बोला कौन सी वाली सुकृति, दान पुण्य वाली? नहीं 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 नहीं, ये सुकृति भागवत के निकट ले जाने के सामर्थ्य नहीं रखती है। तो कौन सी कृति भी, बोला भगवत संबंधी या भागवत भक्त संबंधी, या तो भगवान की या भगवान के किसी भक्त की किसी जन्म में कोई सेवा हो गई होगी, जाने अनजाने में कुछ अज्ञात सुकृति हो गई होगी। कौन सी कृति है, बोला भागवत भागवत भगवान और भगवान के भक्त जन्य सुकृति, दान तप यज्ञ आदि की सुकृति नहीं, भगवत भागवत अज्ञात सुकृति। तत्क्षणात उस वक्त भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये असल में फल है, श्रुति फल है, क्या तापत्रय चले जाएंगे, कल्याणकारी वस्तु मिलेगी, हृदय में भगवान आके अवरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको परम धर्म भगवान के प्रेम के लिए निर्मत्सर होना पड़ेगा, तब ये सब कुछ इस भागवत में हमको मिलेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं, अब इसको विराम देते हैं। तीसरा श्लोक भी मंगलाचरण का चाहें तो पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल में अभी अगर आप हैं तो पढ़ लीजिए एक बार। निगम कलपत्रो गलितम फलम सुख मुखादमृद द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मोह अहो रसिक भुवि भाविका। निगम, निगम कहते हैं वेद को, जैसे निगम का मतलब जहां तक आसानी से पहुंचाना जा सके, जो हमारे पहुंचने से परे हो। वेद कैसा है, बोला वेद ऐसा है जैसे समुद्र है तो अथाह, लेकिन उसका पानी न कोई पी सकता है न ही खेती के काम आ सकता है। तो वेद तो ऐसे अगम्य है, निगम है। तो फिर समुद्र का पानी न पीने के काम आता है न खेती के काम आता है, फिर क्या करेंगे? बोला फिर कोई सुखदेव महाराज की तरह तपोनिष्ठ इस समुद्र के पानी को बादल बना के बरसा दे तो मीठा बन के नदियों में बह जाएगा, और फिर वो पानी तो इतना मीठा है कि पीने में भी प्यास को बुझा देगा और खेती में भी हरियाली ला के फल फूल पैदा कर देगा। तो वेद तो निगम कल्पत्रु तरुर, तरुर का मतलब पेड़, निगम कल्प सभी कुछ देने वाला है, लेकिन उसका गलितम फलम उसका पका हुआ फल, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो ये बात समझने की है कि वेद में सभी चीजें अप्रोक्ष ऐसी हैं जिनको समझना मुश्किल है। जब तक कोई भगवत प्रेमी भक्त वेदों के सार को निकाल के हमारे सामने न रखे। इसलिए प्रभुपाद जी को उपाधि क्या दी, गृहस्थ आश्रम में ये उपाधि दी थी, भक्ति वेदांत। वेदों के अंदर से भक्ति को चुन के प्रकट करके सबको दे, कहाँ कहाँ वेद में भगवान की प्रेम भक्ति है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, एक तो है पका हुआ फल और फिर पकया हुए फल के ये सुख रूपी तोते के मुख से जब ये प्रवाहित हुआ है तो ये अमृत हो गया है, द्रव्य हो गया है, फल भी है और द्रव्य हो गया। अरे फल के ऊपर छिलका होता है, इसके ऊपर छिलका नहीं है, उसके अंदर कोई बीज होता है, इसके अंदर गुठली भी नहीं है, ये कैसा फल है बोला। अगर केवल रस होता तो नीचे गिरता तो धरती को छूता तो पीने योग्य नहीं होता, तो ये रस भी नहीं है और ये फल है, लेकिन ये फल पका हुआ है, अपने आप नहीं गिरता है। बोला अपने आप नहीं गिरता है, अपने आप गिरेगा तो फिर धरती में जाएगा और रस जो है वो धरती से मिल गया तो फिर वो फिर पीने योग्य नहीं रह जाएगा। बोला ये तो नारायण रूपी वेद की, जहाँ से वेद निकलते हैं उस शाखा के ऊपर इस फल को हाथ से पकड़ के ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया, ब्रह्मा जी ने इसको नारद के हाथ में दे दिया, नारद ने इसको व्यास देव के हाथ में दे दिया और व्यास देव के हाथ से सुख के चूंच से इसको प्रकट करके परीक्षित के माध्यम से विश्व में व्यापक करके प्रतिष्ठित किया गया, स्थापित किया गया। तो ये तो परंपरा से आया है, ये तो वृक्ष से फल एक हाथ से दूसरे हाथ से एक डाली से दूसरी डाली तक वैदिक परंपरा से आया है। और पिबंतम भागवतम रसम आलयम, इस अगर भागवत कोई पुरुष है, भगवत प्राप्ति की इच्छक है तो इसको पियो पियो, ये रस आलयम। जैसे विद्यालय होता है उसमें विद्या होती है, औषधालय में औषधि होती है, दुखालय में दुख होती है, और ये होता है, और ये रसालय में है, ये रस का सागर है, इसमें पियो मुहूर बार बार पियो। कब तक पियो, जब तक जियो तब तक पियो। अहो रसी का कौन पिए, एक रसिक और दूसरे भाव का, एक तो रस के ज्ञाता जो है वो और दूसरे जो भावक है जिसके अंदर कृष्ण भावना का उदय हो गया है। और भूमि, और ये केवल इस पृथ्वी के ऊपर है, ये रस पहले आपको कहा था न रस ये स्वर्ग में है, न सत्य लोक में है, न वैकुंठ में है, ये पृथ्वी के ऊपर है, भूमि, भूमि का मतलब इस भूमंडल के ऊपर। अब रसिक कौन है, भावक कौन है, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। किसी का कोई एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बार फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न? हरि बोल, हरे स्तोलानी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। थैंक यू, धन्यवाद।